मैं उसे तुमको समझाती हूँ, तुम बड़े ही समझदार हो, वो तो भोला है। तो लोग घर में सेवा करो, दूर दूर मत जाया करो, आंगन में अपने बच्चों को बुला लिया करो, बड़ा लंबा चौड़ा आंगन हो उसमें खूब खेला। और जो कन्हैया उस बाबू की बात माना कर भला, वो तेरा बड़ा भाई है और तेरा भला चाहता है तो तू जो वो कह तो किया कर। बोले मैया मैं तो हमेशा ही बात मानता हूँ उनकी, ये तो मेरा बड़ा भाई है और ये तो मेरे लिए तो सबसे लड़ लेता है, ये मेरी पक्ष लेता है तो मैं तो उसकी बात मानूंगा ही। जो कह करके साथ हो लिया, बलदेव दोनों हाथ पकड़ लिया और दोनों जाकर थे खेलने लगे। तो मित्र बाबा ने कहा बच्चों को बुला लो, बच्चों का यदि दूर रहना होगा तो फिर भागेंगे जाएंगे। तो तमाम घरों में खबर भेज दी, सब बच्चे आ गए आने लगे और साथ साथ खेलने लगे। अब खेल में क्या जैसे खेलो तो एक दिन के बाद ये शुरू होती है मृग भक्षण लीला, भगवान को मृत्यु खाने की लीला। एक बात निर्माणास्ते रामाद्यागूपदारकारः कृष्णोन्दन भक्षित्वा अनुक्रमात्रेण्यवदयन् स्वागृहीत्वा करे कृष्णोपालभूतौषणीं यशोदाभवसम्भ्रान्तप्रेक्षणात्मघातकः कस्मान् मृगमदान्तात्मन् भवान् भक्षित्वान् रहः वदन्ति तावता ह्युपरोपुनारासुदयोऽप्ययम्। भगवान ने मृत्यु खाई तो क्यों खाई, तो ये जाकर लगे खेलने मृत्यु में, बालू में खेलने लगे। आंगन था उसमें कुछ कच्चा आंगन भी था, कुछ मणियों का भी था, ऊंचे ऊंचे मकान भी थे। ये तीन तरह का वर्णन आता है गोष्ठ का और निकुंज का। एक का निर्माण होता है मणि, एक का निर्माण होता है ये प्रस्तर बालिका भूरी आदि, और एक का निर्माण होता है पत्तियों पुष्पों। तो खास करके निकुंज में तो ये विधो आगे आ जाएगा, सबसे पुष्प की जो निकुंज है वही सबसे अधिक सुंदर और उत्तम मानी गई। तो यहाँ भी तीनों प्रकार की ही सामग्रियाँ थी नंद बाबा के आंगन में भी, तो बड़ा प्रकांड आंगन था। उसमें एक तरफ बगीचा लगा, दूसरी ओर कच्ची जमीन थी, वहाँ सुंदर बालिका थी। ये रजकन भी बड़े भाग्यवान, पृथ्वी के रजकनों पर भगवान ने आकर अपने पैर रखे। ये ब्रह्मा जी कहेंगे आगे पवन में कि महाराज हमको तो इस वृंदावन में लता बुल्म का नाम नहीं दिया, वो तो उद्योग लता बुल्म का नाम दिया। उन्होंने कहा कि साहब लता बुल्म ही न बनाओ, साहब कुछ भी बना दो वृंदावन में, वृंदावन में कुछ भी बना दो, हम यहाँ पर आ करके रहते जाए, जिसको किसी प्रकार से ही इन श्री गोपांगनाओं के गोप बालकों के चरणों का स्पर्श चंडल का स्पर्श प्राप्त हो जाए कैसे ही। तो वो बहुत बड़ा सौभाग्य है उस रज का भी, उस धूल उन धूल कणों का भी, जिनमें भगवान श्याम सुंदर खेलते हैं नृत्य करते हैं। जो धूल कण उड़ उड़ कर इनके बदन पर और कोशों पर पड़ कर उनका स्पर्श प्राप्त करते हैं, वो देवता लोग रजकन बन के आते हैं यहाँ पर। तो इस भूमि में आज भगवान ने कहा कि देवताओं को निकाल देंगे। तो वो जो देवता रजकन में वर्तमान थे वो अलग हो गए, इच्छा उनकी। लेकिन जो जो देवता इंद्रियों के अधिष्ठात्री हैं वो कहाँ जाए, पर भगवान यहाँ पर इंद्रियों को ले करके खेल कर रहे हैं। जबकि इंद्रियां भगवान की, भगवान से अलग कोई वस्तु नहीं है, तत्व तो है, भगवान भगवान का शरीर, भगवान का मन, भगवान के इंद्रियां, ये सारे के सारे सच्चिदानंद घन भगवत रूप ही है, सबसे मनाए हैं। तो अब ये उद्यान में खेल रहे थे इस बगीचे में आंगन में, और वहां पर धूप आज उनके मन में आया कि तुम्हें घरौंदा बनाने का खेल खेल। मिट्टी को बालू बालू को धूप को घरौंदा बनाए करते हैं, तो वो घरौंदा बनाने लगे। अच्छी किस्म की छोटी सी अंजलि उनकी जरा से नन्हे नन्हे हाथ, तो वो भी धूल इकट्ठी करके पहले उनका सूप बनाने लगे, फिर दीवार फिर घर इत्यादि रचना करने लगे। तो श्रीदान रहा बड़ा बड़ा तेज, तो श्रीदान में इसी प्रकार से अनुकरण हुआ। सुंदर दीवार बनाई, इतने बड़ा एक नगर बनाया, ऊंचे ऊंचे घर बनाए, तो इनको बना नहीं, इनको बना नहीं। इनमें एक बड़ी विलक्षण बात है, ये अगर हारे नहीं तो मेहराबे कौन, और ये अगर जीतते ही रहे तो लीला क्या हुई थे, तो जीते ही हैं अधिक है वो, इनको कौन जीते, वो तो सब पर विजय प्राप्त किए हुए स्वभाव से हैं। तो ये अगर न हारे तो कोई इनको हरा दो ऐसी बात नहीं, पर इनका स्वभाव है हारे खेल बिताओ हैं नहीं। भरत जी ने कहा कि अपनी अपनी हार मंजूर करके ही, अपना पराभव स्वीकार करके ही ये भक्त का आनंद वर्धन किया करते हैं, उनको विजयी बनाया करते हैं, स्वयं पराजित हो जाते। तो ये सूप बनाने लगे पर इनसे मकान मकान ठीक बने नहीं, तो सूबान अच्छा बना दो, सबसे दीवाल बना दो, सबसे छत बना दो, सबसे मकान बना दो। तो उसके मन में दिव्य उल्लास हो कि देखो हम जीत गए, ये बनाने से क्या कर हुआ, और सब बच्चे चालू पूछ हैं बोले कृष्ण हार गया हार गया, उसको बना नहीं उसको बना नहीं, सब नाचे रूढ़ भी प्रसन्न हार हो न तो हार गया, उससे तो नहीं बना, वो सीधा बड़ा होशियार है, देख मैं तेरा चेला बन मुझे कुछ सिखा दो। हाँ मेरे क्यों सिखा दो, सबसे बड़ा राजा बना सीखता है तो हुक्म चलाता है, आज हार गया तो कहता है सिखा दो, ये स्वीकार कर लो। अब वो बार बार हारो हारो और वो बार बार जीते जीते सब के सब बच्चे बड़े बड़ी ताली पीते, तो अब देखा कुछ लीला बदल नहीं कर, तो बोले हमसे भी बनता बनता जो क्या वो तुम्हारा भी रहे देंगे। तो उठ करके खड़े होकर उसके बनाए हुए घरों को ढा दिया, श्रीराम के बनाए हुए घरों को उन्होंने ढा दिया। तो श्रीराम निकाह क्यों ढा दिया मेरा, फिर बनाऊंगा मैं किसने, फिर बनाए बच्चों ने का क्यों ढा दिया भाई, किसने बनाया तू बना नहीं सका उल्टे दूसरे को ढा देता है। तो अब दीदी जरा जिससे लीला बहुत अच्छी बात है, अब उनका ध्यान बदलना, वो लोग नहीं देखो वो और कुछ करता है, इतना वो करके मिट्टी वो करके खाने लगे, मिट्टी वो कर खाने लगे। अब यहाँ बड़ी सुंदर बात वो कहते हैं कि भाई देखो यदि भंग है कति जगदंडा निशतस प्रसूतो संपातु क्षपयतु तत्र प्रयतते सौवायं भूमि पुरगृह विहर्मानरभसे वृषं शान्तस्किन्नत्तदपुन विरामं रचयतु। क्या भाई इस रचना में जिनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, संकल्प किया भ्रगति बड़ा सी चली, सैकड़ों सैकड़ों की ब्रह्मांडादी की सृष्टि हो गई, रक्षा हो गई और पुनः संहार हो गया। जिनको भू भंग मात कर सो ये भूमि की जरासी कोई दूसरी क्षति हो जाए तो संहार हो जाए, ये देख लें तो फुगन हो जाए, इस प्रकार के भगवान जिसकी भू बहुरी सौ विश्व ब्रह्मांडों को रचना में और पालन में और संहार में समर्थ तुरंत कर डाले, ये भगवान आज भक्त पूर्ण बस प्रेम पर्वत होकर मिट्टी को घर बना रहे हैं और दम नहीं पाते। अब इतनी मेहनत पर की उन्होंने कि सारे शरीर पर पसीना बहने लगा और अच्छी बना लेंगे, अपनी अच्छी बना लेंगे, पर बना नहीं पा रहे हैं। कभी वो सोचता फिर भी कर रहे हैं बना लें तो कहा भाई वो नहीं था, ये भक्त प्रेम पर्वत का था, ये बड़ा सुंदर निकाल। तो देवताओं ने देखा, देवताओं ने देखा कि भाई क्या करो, ये भूल से तो आज हम लोगों को इन्होंने अपने संकल्प को दूर कर दिया, पर अंदर तुम बैठे हुए हो ही। तो ये भगवान भक्त भगवान ने जान लिया, देवता उत्पन्न थे। देवताओं ने मन में सोचा कि आज इस रौद्र कल से हमारे मस्तक का अभिषेक होगा तो हम निहाल हो गए। जो रुकनों को अपने हाथों से बोलो तो झंडा बना रहे हैं, ये रुकन का कितना महत्व है। तो ये जो असत पुरुष है उनके लिए तो अलग है, जो असत है उनको तो ये रज मिलती नहीं, तक नहीं मिलते। तो मानो उन्होंने कहा कि हे दयाल हो करुणा सागर, हो नारदादि खनकारी मुनिंदो योगिंदों के परम हो उमेश गोरज का, जो गोरज सुंदरियों के बज बालकों थे, और तुम्हारे अन्य से स्पर्शित है, सागर जी से स्पर्शित है, वो हमें मिल जाए। तो मानो प्रार्थना को सुनते ही भगवान ने गोरज को उसको वहां के धूल को धूल कण को मने वो अपने मुख में ले लिया। दूसरा कारण ये बताते हैं कि भगवान करेंगे भूषण रोग प्रतिज्ञा, वो था मान प्रबंधन को सफल भगवान वहां मुझको जो जिस प्रकार से भक्ता है उसको मैं उसी प्रकार से भक्ता हूँ। ये गीता में तो कहेंगे पर ये भगवान की स्वाभाविक प्रतिज्ञा ये बार बार कहते हैं कि मुझको जैसा भक्ता है वैसे मैं भक्ता हूँ। इसमें बड़ी महिमा कि इतने बड़े भगवान और भगने वालों के अनुरूप भगें, सेवा करने वालों का अनुरूप सेवा करें, इसका बदला जो कहते अनुसार दू वो कितनी की महानता है कि ये भगवान की नित्य घोषणा होती है उनके प्रेम को। लेकिन आज भगवान ने सोचा कि ये प्रतिज्ञा हमारी ब्रजनी फलने के लिए, ये तो प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए है कि जो बदला ले रहे, किसी प्रकार से जो सेवा करके सेवा के बदले में प्रसन्न होकर नाबुक जो दो उसे ले लें और लोगों में सुख मिलो अपने लोगों में, उनके लोगों बहुत सी प्रतिज्ञा। तो भगवान ने सोचा कि ब्रजने तो मेरी ये प्रतिज्ञा खो सकती नहीं, ब्रजने जो वात्सल्य स्वच्छ माधुर्य के जो आधार ये श्री गोपांगनाए गो सका इत्यादि हैं, ये तो सर्वत्यागी, सर्वत्यागी का अर्थ ये आगे आएगा प्रेम को प्रसंग में, जो केवल प्रेमास्पद का सुख ही जिसका जीवन बन गया है, उस प्रेमास्पद को सुख के अतिरिक्त जिसके स्वभाव में जिसकी निष्ठा में जिसकी इच्छा में जिसके स्वरूप में कुछ और वही मिल गया हो वो सर्व त्यागी है। तो बतलाते हैं कि जो मुमुक्ष मोक्ष के इच्छुक है वो त्यागी अवश्य है पर वो भी सर्व त्यागी नहीं है, क्योंकि वो अपने बंधन युक्त अहम को मुक्त करना चाहते हैं। मुक्ति में मोक्ष में बंधन को सोचा, बंधन न हो तो मोक्ष हो सकता, और जहाँ बंधन है वहाँ कोई अलग अहमवादी है जो अपने को बंधन में मानता है। बंधन किसी का होता है तो वो मनुष्य जो है वो कहता है कि मैं बंधन में हूँ और मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। तो बंधन से मुक्त होने की जो उसकी कामना है ये उसमें अवशेष है तो सर्वत्यागी। तो सर्वत्यागी कौन है? जो अपने प्रेमास्पद प्रियतम को सुख के अतिरिक्त जिसके स्वभाव में और कुछ शोष नहीं मिल गया हो वो है सर्वत्यागी। इस सर्वत्यागी के आचरण कहीं कहीं लोक दृष्टि में विपरीत हो सकते हैं, क्योंकि इसको न परवाह लोक दृष्टि की, न परवाह लोक की, और न परवाह परलोक की, और न मोक्ष की। इसको तो केवल एक ही बात देखनी है और वो स्वाभाविक देखता है कि मेरा प्रेमास्पद किस बात में सुखी होता है। वो बात उसको सुखी कर देने वाली बात यदि मेरे आचरण में दोष सिद्ध कर दो तो कर दो भाई, परवाह नहीं उसकी, वो सुखी हो गया ना बस। तो सिद्धांत कहते हैं कि जिसका भगवान के अनुकूल आचरण होता स्वाभाविक उसके कभी दोष हो सकता है क्या? दोष तो जगत की कामना में ही रहते हैं। जब जगत की कामना का फल त्याग हो गया तो दोष से सर्वथा मुक्ति हो। तो इन्होंने सोचा भगवान ने कि ब्रज में तो हमारी ये बात सो नहीं सकती, यहाँ पे गोप गोपी ये गोप बालक सर्व त्याग कर दो, मेरे सुख को ही जीवन का सर्वस्व मानते हो। तो बोले मैंने जिस मुंह को ये बात कही और जिस मुंह से ये बात कहूंगा उस मुंह में घूम डाल देगा। ये मुंह ब्रज के लायक नहीं, ये तो उन लोगों के लिए कहने की है कि जहाँ कुछ अहम काम करता वहां तो भगवान कुछ में बड़ी महिमा के लिए भेज दो, जैसा करता वैसा ही भगवान करते हैं, बड़ी महिमा भगवान की। यहाँ ये बात नहीं तो भगवान ने सोचा कि उस मुंह में तो धूल डाल देनी चाहिए जो मुंह ऐसे प्रेमियों के सामने भी ये कहे कि मैं तुम्हारे अनुरूप तुम्हारी सेवा के अनुसार सेवा करूंगा, कर नहीं सकता। ये तो यहाँ तो ऋणी रहना है, यहाँ तो सेवा ही नित्य करवाना है, और इस सेवा करवाने में उनको सुख की उपलब्धि होती है। इसलिए जिसमें उनको सुख की उपलब्धि होती है वही होता है सेवक का भाव। तो इस अवस्था में ये था माम प्रबंधन के सांसद भगवान में हूँ, जो मुझे जिस प्रकार भजता है उसे मैं उसी प्रकार से भजता हूँ, जो मेरी जैसी सेवा करता है उसको मैं उसी प्रकार की सेवा करके उसका बगड़ा उठा देता हूँ। ये बात थकती नहीं, ये बात यहाँ बैठती नहीं। तो मानो भगवान ने वो धूल को मुंह में लेकर ये दिखलाया कि ऐसे मुंह में ऐसी बात कहने वाले मुंह में धूल डालता हूँ मैं, अर्थात ब्रजवासियों के सामने अपनी प्रतिज्ञा को न निभाते देखकर भगवान ने अपनी पराजय स्वीकार की। अब इसको विभिन्न कारण देखो, भक्तों ने महात्माओं ने अपनी अपनी दृष्टि से, और भगवान ने सभी कारण ठीक बह जाते इतना सोचा भगवान ने कि वो यहाँ तो फूल करना है, यहाँ तो फूल में सभी तरह की बातें होंगी और जहाँ क्रिया का विशेष प्राधान्य रहता है वहाँ रहता है रजोगुण, तो केवल श्री सत्यदेव में रहने के नाम से रज में कही, इसलिए उन्होंने रज को रज थी रज रजोगुण, तो उन्होंने रज को संग्रह करने के लिए उन्होंने डाल दिया, बड़े कुछ रज नहीं चाहिए क्योंकि सत्य से काम नहीं चल। तो दूसरी बात सोची, ये पृथ्वी का नाम एक क्षमा है, क्षमा नाम पृथ्वी का, तो भगवान ने देखा कि ग्वाल बाल वो सोचें और अभी अभी अपमान कर दो ना गया, तो अगर मेरी ऐश्वर्य शक्ति अपना काम करने लगे और मेरे अपमान को न सह, तो मेरे उन प्यारे भगवासियों का दुख, बालकों का दोषों का कहीं अनिष्ट हो जाए, तो उस ऐश्वर्य शक्ति को दबाने के लिए उन्हें क्षमा को अपने अंदर रखने के लिए, क्षमा की प्रधानता के लिए पृथ्वी रूप क्षमा को रजकन के रूप में बने लिया। ये दूसरा भाव। तीसरा भाव अभी बताया जा चुका है कि देवताओं ने देखा कि हमारे हम जो अंदर बैठे हैं तो हम बड़ा सा विशेष प्रार्थना करेंगे आज कि हम बड़ा मूर्खमान हो जाए इंद्रियों के विचात्र देवता, और ये मुख के द्वारा ये गोप और गोप बालिकाओं ये गोप बालकों के द्वारा गोपांगनाओं के चरणों के द्वारा स्पर्श के हों, ये जो ध्वनि हो ये ध्वनि में रखें हम सब पर कर जाए, तो हम निहाल हो जाए, ये बात भगवान समझ गए। इसलिए भी उन्होंने रजतन सबकी इच्छा पूर्ति करनी है ना सब तरह की, और संस्कृत में पृथ्वी को रसा कहते हैं, रसा भी कहते हैं, तो भगवान ने सोचा कि सब रसों में ले चुका, तो ये रसा का रस है, पृथ्वी को धूल करने भी क्या स्वाद है क्या रस है वो भी तो रसवती है ना, तो इस रस का भी आस्वादन करूं। इसलिए फिर भगवान के एक मन में और बात आई और ये बात जरा लोगों को देखने में खास करके मर्यादा के क्षेत्र में जरा गड़बड़ से मालूम होती है। उद्धव ने तो कहा कि गोपियों को स्वयं भूमि का स्पर्श हो जाए मेरे मस्तक से, पर भगवान ने कहा कि वो भूमि तो मेरे प्रसाद की थी, इसको तो मैं चाटू और इसको मैं भक्षण करूं, ये जो मेरे प्रेमियों की परिभूमि है ये मेरे लिए केवल सुख रहने की वस्तु नहीं है, ये तो रसमयी है, इन सारा रस भक्तों के प्रेमियों के चरणों में आकर कहीं केंद्रित हो जाता है। रसो वही सह, ये भगवान जो रस रूप है रसमय है, ये रस जाता कहाँ है, इसके लिए स्थान कहाँ, तो कहा ये रस उतर करके जाता है प्रेमियों की हृदय में, और हृदय और हृदय का वो रस प्रेमियों का ये उतरते उतरते भक्तों के चरणों में उतर जाता है, और इन चरणों का जहाँ स्पर्श होता है वो वस्तु वो स्थान वो छोटे रसमय बन जाता है। तो ये मेरे प्रेमी गोप बालक, मेरी प्रेमिकाएं ये गोपांगना, इनके चरणों के रस से रसमय जो हो गया है यहाँ का एक एक कण, वो कण मेरे लिए आस्वाद जो है मेरे लिए वो भोजन है, तो जब तक मैं इसको अपने मुंह में न रखूं तब तक तो मैं इसका आदर ही नहीं कर पाता। भगवान ने ये बात गुप्त रूप से यहाँ पर निर्देश की, भक्तों को स्वयं भूमि को पाने की बात तो उन्होंने तो स्वरूप में कहूँ कि भागवत में ही एकादश में भगवान कहते हैं वो शब्दों कि भाई अनुभवाम मुख्यम प्रयत्न, उन भक्तों की स्वर्ण धूलि को प्राप्त करके उस स्वर्ण धूलि से अपने को पवित्र करने के लिए मैं उनके पीछे पीछे मित्र चला करता हूँ। अनुभवा मोहन मित्रम, एक दो दिन नहीं, एक दो बार नहीं, एक दो समय नहीं, भक्त जहाँ जहाँ जाते हैं मेरे प्रेमी अचिंतन, अचिंतन का अर्थ है कि जिसके जिनके पास अपना और अपने लिए वस्तुओं की बात अलग संकल्प भी न रह गया हो, न अपना संकल्प न अपने लिए किसी वस्तु का संकल्प, जिनके अंदर से ममता का और अहम का संकल्प निकल कर सारी ममता सारा अहम भगवत चरणारविंद में समर्पित हो चुका हो, ऐसे जो भक्त हैं मेरे प्रेमी, उन प्रेमियों की चरण धूल से अपने को पवित्र करने के लिए मैं उनके पीछे पीछे नित्य नित्य चला करता हूँ। ये तो भगवान ने उसके शब्दों में कहा, यहाँ शब्दों में मैं करके क्रिया में इससे उसी बात दिखाई कि जिस समय जिन चरणों के द्वारा स्पर्शित जिनके रस से ये रसमय हो गया है यहाँ का प्रत्येक भूमिकन, इसको मैं अपने मुख में रखकर इसका आस्वादन कर, ये मरज भाव है ना, इस चरण भूमि में क्या आस्वादन है और क्या स्वाद हो इसका पता हम अपनी कल्पना से नहीं कर सकते। ये तो भाव राज्य की बड़ी सुंदर वो सुतम वस्तु है। भाव राज्य मैंने कल्पना की नहीं, भाव राज्य का अर्थ कोई करो भावना का कल्पना कर लो, वो कल्पना नहीं, भाव का अर्थ है यहाँ पर करो जो प्रेम को आठ अंगों में जो सातवां अंग है जिसके बाद महाभाव होता है भाव महाभाव, तो ये भाव राज्य की बात है, तो उसमें कितना स्वाद है ये दूसरा को नहीं जानता, इसलिए भगवान ने उस वेदी के रज को अपने मुंह में रखा। और बातें कहते हैं कि भाई इस अवतार में पृथ्वी का हित करना है, ये अवतार तो सारे कामों के लिए है ना, तो पृथ्वी का जब हित करना हो तो क्या करें, इसके कुछ अंश को पहले ब्राह्मणों को बीजों को दान करें, तो दांत का एक नाम बीज है, दांत का नाम एक बीज है, तो वो जिस पृथ्वी का हित करना है उसे कुछ ब्राह्मणों को दान करें, तब नहीं होगा पृथ्वी का, बीजों को दान करें तो दांतों का नाम दृढ़ है, इसलिए पृथ्वी का दान करने के लिए उन्हें उन्होंने दांतों के नीचे रखा, मुंह में रखा। और कहते हैं कि भाई ब्राह्मण तो सिर्फ सात्विक कामों में लगे रहते हैं, तो अब उनको भी जरा असुर संहार के काम में सहायता करनी पड़ेगी हमारी, कुछ उन्होंने भी रज चाहिए, तो बीजों को रज क्यों मिले, इसलिए भी कुछ बीजों में भी जरा रजोगुण आ जाए तो लोग ठीक ठिकाने से काम कर सके। तो बोले भाई और कोई कारण, बोले कारण बहुत है, पूछना का दुख हुआ था, तो जहर को मिट्टी उतारती है, मिट्टी जहर का शमन करती है, तो पहले मानो जहर किया जहर खाया अब ये अर्घ ले करके उसको दवा की, ये भी वो कारण है। अब गोपियां उलाना देने बार बार आती तो कितने हाथ साबुन हो जाते हैं मिट्टी से ना, कितने हाथ हों उनको धोना तो साबुन वाबुन करते होंगे, तो मिट्टी से बालू से हाथ धोने तो मुंह कितना और हाथ है उनका, तो कहीं पकड़े वगड़े फिर न जाए, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो मुंह में मिट्टी लगा करके साफ कर लो, तो इन्होंने इसलिए मिट्टी खा ली, फिर सोचा कि भाई ये बजरंग में सबको आवंगन है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अनंत कोटि जीवन, और ये सबको तृप्त करने वाले वस्तु मिलने चाहिए, धन सबको मिलना चाहिए, उदार है भगवान, विशाल हृदय उनका नाम है, जो केवल अपना और अपने परिवार का नहीं, जो सारे विश्व के कण कण का हित चाहता है, इसी को महामना कहते हैं, इसी को उदार कहते हैं, वो विशाल हृदय वाले हैं, तो भगवान बड़े विशाल हृदय वाले। तो इन्होंने सोचा कि सबका हित हो, सबको रस मिले, तो सबको कैसे मिले, ये बजरंग सबके पास कैसे भेजूंगा, और सारे जगत में जगत के सारे प्राणियों को चराचर जगत को और ये प्रेम दान करने के लिए सबके पास जाए भेजू कैसे, कुछ मार्ग हो। तो सोचा कि हमारे सिर में से बच्चे हैं, अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड के जीव जो हैं ये सब हमारे अंदर बसते हैं पेट में, तो ये सब के सब बेचारे गोपियों चंद्र जी के लिए जाते नहीं, उनको बुलाचा पूर्ण करने के लिए, उनका हित करने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई। तो और बात, अब वो कहते हैं कि भाई भगवान ने एक बात और सोची कि ये बजरंग जो है, ये बजरंग का इतना बड़ा महात्म है कि इसकी लालसा करते हैं सब लोग, देवता ऋषि मुनि सब लोग इसकी लालसा करते हैं, तो इसका एक आदर्श रखना चाहिए कि सबसे बड़ा जो काम करे उस काम को लोग करने लगे हितकों से, ये सबसे बड़े रहे, ये सर्वलोक महेश्वर। उन्होंने ये दिखाया कि यहाँ की मिट्टी मैं भी खाता हूँ, ये सबके लिए ये मिट्टी जो है, बजरंग जो है, ये आस्वाद्य है, भक्षण करने की वस्तु है, इसी के द्वारा सारा काम होता है। पांचवी फिर एक बात इनके मन में और आई, वो हो कि भाई ये भक्तों के चरणों का, प्रेमियों के चरणों का अनुसरण किए बिना प्रेम नहीं मिलता, कोई चाहे हम पोते से प्रेम प्राप्त कर लें, पढ़ कर प्रेम प्राप्त कर लें, तर्क वितर्क के द्वारा हम प्रेम प्राप्त कर लें, या कुछ दो लेकर बदले में प्रेम खरीद लें, तो कैसे मिलेगा, ये तो कैसे मिलता है कि प्रेमियों की स्वयं रज का आराधन करने से मिलता है, और कोई उपाय नहीं, बिना महत्साद रजो निषेकम, ये तो बिना महान पुरुषों को, भक्तों को, प्रेमियों को चरणों की रज का आराधन किए बिना ये मिलता नहीं, प्रेम नहीं मिलता। और ये बड़ी विलक्षण बात है, प्रेम राज्य में बड़ी विलक्षण बात कि चाहे वो भगवान हो चाहे भगवान को प्रेमी हो, ये दोनों बने रहते हैं एक दूसरे को प्रेमी, तो उसको बनाए रखते हैं प्रेमास्पद। तो भगवान जो स्वयं प्रेम रूप है, तो सबको प्रेम दान वहीं से होता है, प्रेम के अचल अगाध समुद्र है, परंतु ये स्वयं प्रेम के स्वभाव को ग्रहण करके अपने में प्रेम की कमी का अनुभव करते हैं। ये मन में समझते हैं कि जितना प्रेम मुझसे ये गोप बालक करते हैं, ये माताएं करती हैं, ये श्री गोपांगनाएं करती हैं, मैं तो उतना प्रेम कर ही सकता, अरे अनंत ब्रह्मांड की बात में सोचता हूँ ना मैं, सारे जगत की कितनी कितनी व्यवस्था की बातें सोचता हूँ और क्या क्या सोचता हूँ, और ये तो केवल मेरी बात सोचते हैं, ये तो मेरे सिवा उनकी भी जगत है ही नहीं, मैं तो कहीं प्रेमास्पद होने पर भी विश्वंबर नहीं हूँ, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला, जगत का संरक्षक भी हूँ, शासक भी हूँ तो मुझे तो समय समय पर बहुत से काम करने पड़ते हैं, तो मेरा प्रेम एकांगी नहीं, उनका प्रेम एकांगी है, ये सिवा मेरे और किसी चीज को जानते हैं, तो ये प्रेम मुझे भी प्राप्त है। तो पूछा कैसे प्राप्त हो, तो क्या सारा प्रेम तो इनके स्वयं भूमि में आ गया। तो कहीं इनके प्रेम से भरी हुई जो रज कनिकाएं हैं वो मेरे अंदर प्रवेश कर जाए तो मुझे प्रेम मिल जाए। तो प्रेम के भूखे भगवान ने प्रेम प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से रज को ग्रहण किया, भूमि को ग्रहण किया, ये उसके कुछ भाव हैं। तो जब ये मिट्टी खाने लगे तो अड्डाऊ जी को तो संभला दिया था ना मैया ने, ख्याल रखना देखो। तो एक बच्चे ने कहा भैया देखो तो सही, तुमको याद है उस दिन के बाद, उस दिन के लिए हम लोग बगीचे में थे, इस कन्हैया ने एक फल तोड़ खा लिया, याद है ना तुमको बाप, और मैया ने देख लिया। तो मैया भागी भागी आई और निकाल के इसके मुंह से फल फेंक दिया और हमसे हम सबसे बोली कि देखो बेटा न मालूम चालू में जान लें, अरे फल भटूरे का भी होता है, फल आग का भी होता है, विष भरा फल भी तो होता है, उसको भी फल ही कहते हैं। तो ये कहीं फल फल समझ के कुछ भी मुंह में डाल दे और कुछ हो जाए उसको, ये तो समझता नहीं, अभी अबोध बच्चा है, क्या पता इसको। तो देखना आगे मेरी आज्ञा के बिना कोई चीज मुंह में न ले ले भला, सबको समझा दिया था। उस बच्चे ने कहा बाबू से, तो बाबू जी देखो देखो दादा, माँ के बाद इस रूप याद है ना, आज हम लोग सबके सामने मिट्टी खा गए और मिट्टी खा गया और अभी ये मानता नहीं, तो रोको इसको। तो बाबू ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा, बोले नहीं मत खा, बोले खाऊंगा। बलराम ने धमकाया भी, बड़े भाई ने ठहरे धमकाया भी, पर ये माने नहीं, माने नहीं। इनको तो वो पुरानी समुदाय की स्मृति हो रही कि सबको सब मेरे उधर लोगों हैं, उन सबको आज तृप्त कर देना, मौका लगा फिर सबका भी मिट्टी खाने को मिलेगी। आज अब मौका आ गया, लगा खाने पर सभी को दे देना है, सभी के मस्तक का अभिषेक हो जाए हृदय कण से आज। इस प्रकार से भगवान जब माने नहीं तो ये काबिली मैया से कह कर, तो पहले दूसरे दूसरे बच्चे गए श्रद्धा उदू गए और बोले मैया देख ये कन्हैया ने आज मिट्टी खा ली है, वो देख जिसने तो तेरे धोखा रही माँ की खाई, मिट्टी खा ली है तेरे धोखा ने आज, अब मैया हमको लाना नहीं मानता। तो वो वही बैठे थे मैया ने जहरू राम 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 मिट्टी खा ली, अब मैया को हृदय में भरा बात सब रख, ये आएगा आगे जिसे वो स्वयं परीक्षित पूछेंगे कि भाई वो सुख जो वसुदेव जी को नहीं मिला यशोदानंद को कैसे नहीं मिला, बात क्या थी। तो यहाँ निर्मल वात्सल्य है, यहाँ के निर्मल वात्सल्य में कहीं भी ऐश्वर्य का मल नहीं लगा, यहाँ ऐश्वर्य को मल मानते हैं, यहाँ ऐश्वर्य को मल मानते हैं, यहाँ ईश्वर का नहीं चाहिए, यहाँ तो बस बिल्कुल मधुर ही मधुर है, मीठे मीठा। तो चाहे ये सौ माथों को छोड़ दे, मक्खन को बहा दे, बंदरों को बांट दे, स्वयं खा जा सपना भी अगर पक सके, तो मैया ये भी कहती कि इसको कोई दंड दिया जाए। और इतनी इतनी गोपांगनाओं ने आकर के उलहने दिए कि हमारे हमारे घरों में इसने क्या कर दिया क्या कर दिया, तो प्रसन्न हुई मैया, कोई बात नहीं तुम्हारे भांडी को फोड़े ना और ले जाओ यहाँ से बाहर, क्या जितने मक्खन ले जाओ, मनो मक्खन रखा है। और गोपियां ये आगे हैं, गोपियों ने कहीं वो नहीं कहा उसको बांध के मारे, ये आगे दामोदर लीला में ये कथा आएगी। गोपियों ने तो आकर के ऊपर उलाहना दिया, वहीं पर इसी लीला में आएगी, गोपियों ने उलाहना दिया कि मैया छोड़ दो, सुबह तो बड़ी लगी हो गई है, ये सब ठीक नहीं, देखा कैसा स्थिति है तू, उसको बने भैया डांट रही हो, बड़ी मुश्किल है तू, उसको रोटियां नहीं चाहती। और श्री यशोदा मैया नहीं चाहती कि कुछ भी नुकसान कर दे और कुछ भी खा ले, कुछ दंड दिया जाए, पर आज बीमार में पड़ जाएगी। वात्सल्य है ना मैया का, मिट्टी खाली है और कुछ उसके चोट में व्याधि हो गई तो जो नित्य निरामय है, नित्य निरामय, कोई भी रोग शोक जिनके नाम लेने वाले को समीप नहीं आ सकता, सारा भव रोग मिट जाता है, नाम लोक भव समीप सुखानी, वो भगवान माता के हृदय में स्वरूप में प्रकट हो गए कि बच्चों ने मिट्टी खा ली और कहीं ये बीमार न पड़ जा। तो मैया के मन में बड़ी त्वरा हुई कि ये भीत हो गया ना, मानता ही बात, तो उसको जरा डांटना है तो हाथ में एक लकड़ी उठाई छोटी से खड़ी, छड़ी का कोई गंदा नहीं है भरा हाथ, वो छड़ी भी स्वयं रूपा ही छड़ी है, बड़ी कोमल छड़ी, अगर वो लग दी जाए तो उसके द्वारा जैसे किसी अंग पर कोमल हाथ छिड़ा जैसे हाथ ही छिड़ेगा, तो नाम उसका छड़ी। तो छड़ी हाथ में ली मैया ने, उस छड़ी हुई और बड़ा रोष रोष भर गई मन में, और सोचने लगी कि मिट्टी था ना लिखी गया, करारत तो बढ़ती जा रही है ना, तो अभी से यदि इसको डांट डपट न की जाए तो इसका दोष तो फिर जड़ पकड़ लेगा और फिर किसी के हाथ रखो ही रहेगा। आज मिट्टी खाई कभी और कुछ खा लो, कभी और कुछ खा लो, तो ठीक है। तो मैया दौड़ी, दौड़ के उद्यान में जा पहुंची और वो छड़ी थी उसकी मल्लिका की ग्रेन होती है ना, उसकी नहीं थी कोई सी बंदी थी, जरा से दिखाई गई छड़ी। तो मैया ने जा करके और हाथ पकड़ करके, अब देखिए जिन भगवान की स्तुति करते करते लोग फलते नहीं, मैया कहती है कस्माद मंदात्मा मंदात्मा, हाँ मदांतात्मक, यशोदा जी बोली अरे नटखट बड़ा तो भूत हो गया है, कितनी बड़ी शरारत करने लगा तेरे मन में जरा भी डर नहीं। अब जिनको स्तुतियों से जो भगवान बोले नहीं, तुम भगवान को ये डांट रही है और ये कह रही है कि तुमने ये क्या किया, तुमने अकेले में कर क्या लिया, तो मैंने ये क्या कर लिया, क्या किया, मानो कुछ सफल नहीं है तो सफलन निगम किस पर चुना सरकम, अरे संकल ये कहो ये अंतिम चर्चा कहूँगी, बड़े सावधान रहे, बड़ी नम्रता से मांगे, रोते हुए सुनने बनाकर बोले कि मैया ना सर नती नती मैया नहीं, तो माता ने